नमस्कार, आप सुन रहे हैं जनसत्ता पर कारोबार जगत की बड़ी खबरें। हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन घरेलू शेयर बाजार में सुस्त शुरुआत के बाद आखिरी सेशन में तेजी लौटी। बुधवार को 30 शेयरों वाला बीएसई सेंसेक्स इंडेक्स 271.50 अंकों के बढ़त के साथ 71,657.71 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं दूसरी ओर एनएसई निफ्टी सूचकांक 73.86 अंकों की मजबूती के साथ 21,618.70 के स्तर पर बंद हुआ। तिमाही नतीजों से पहले सूचना प्रौद्योगिकी कंपनियों के शेयरों में भारी उतार चढ़ाव बढ़े कारोबार के बाद बुधवार को हुई भारी लिवाली के चलते देश के प्रमुख शेयर सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी 50 बढ़त के साथ बंद हुए। सूचकांक में बड़ी हिस्सेदारी रखने वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज और बैंकिंग कंपनियों के शेयरों ने भी लाभ में योगदान दिया। भारत 2027-28 तक $5 ट्रिलियन से अधिक की GDP के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ये बात कही है। वित्त मंत्री ने कहा कि वर्तमान में 50 करोड़ से अधिक भारतीयों के पास बैंक खाते हैं, जबकि 2014 में ये संख्या 15 करोड़ थी। वित्त मंत्री ने बताया है कि भारत को पिछले 8-9 साल में $595 अरब का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिला है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रूढ़िवादी अनुमानों के हिसाब से भी भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार वर्ष 2047 तक $30 लाख करोड़ तक पहुँच जाएगा। अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने बुधवार को वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के दौरान राज्य में ग्रीन एनर्जी और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में अगले 5 वर्षों में 2 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया। अडानी ने कहा कि इस निवेश से राज्य में लगभग 1 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा हो सकती हैं। उन्होंने आगे कहा कि शिखर सम्मेलन के पिछले संस्करण में कंपनी ने 55,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता जताई थी। अडानी ने कहा कि कंपनी वर्तमान में कच्छ में 25 वर्ग किलोमीटर में फैले 30 गीगावाट क्षमता के साथ एक ग्रीन एनर्जी पार्क का निर्माण कर रही है, जो अंतरिक्ष से भी दिखाई देता है। देश भर में डिजिटल पेमेंट का सिलसिला काफी तेजी से चल रहा है। इसी रेस में है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भी है, जो कि देश में काफी पसंदीदा ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म बन गया है। इसका इस्तेमाल देश के कोने कोने में गली गली में हो रहा है, लेकिन एक समस्या है। UPI जितनी तेजी के साथ पॉपुलर हो रहा है, उतने ही उससे जुड़े स्कैम्स बढ़ रहे हैं। यही वजह है कि इस स्कैम को रोकने के लिए NPCI को एक कैंपेन शुरू करना पड़ा है। ये स्कैम विशेष रूप से टेक्नोलॉजी से कम परिचित लोगों को निशाना बनाकर उनसे हजारों लाखों रुपए लूट रहे हैं। अगर आप भी इसका शिकार हो चुके हैं या अभी तक आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, तो आप सावधान हो जाइए। ऑनलाइन गेमिंग कंपनी डेल्टा कॉर्प ने मंगलवार को कहा कि 23,200 करोड़ रुपए से अधिक की GST की मांग मनमानी और कानूनी प्रावधानों के विपरीत है, लिहाजा उसने इस कर भुगतान के लिए कोई प्रावधान नहीं किया है। डेल्टा कॉर्प का दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के लिए एकीकृत शुद्ध लाभ सालाना आधार पर 59% की गिरावट के साथ 34.48 करोड़ रुपए रहा। इस दौरान कंपनी की परिचालन आय 181.54 करोड़ रुपए रही, जो एक साल पहले की तुलना में 18% कम है। डेल्टा कॉर्प ने तिमाही के वित्तीय नतीजों के साथ जारी एक टिप्पणी में कहा कि 27 सितंबर को होल्डिंग कंपनी और उसकी 2 अनुषंगियों को GST के कथित कम भुगतान के लिए GST आसूचना महानिदेशालय हैदराबाद के कारण बताओ नोटिस मिला था। इसमें 1 जुलाई 2017 से 31 मार्च 2022 की अवधि के लिए कुल मिलाकर 16,822.9 करोड़ रुपए GST की मांग की थी। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आए जनसत्ता.com पर। नमस्कार।